We received a question from one of our viewers. What is the answer for the injustice done to Palestine people done by Israel forces? Like Palestine people are being forcefully removed from their homes. Kindly comment.
देखिए आप स्टोरी को इसराइल के बम्बारमेंट शुरू करते हैं वहां शुरू किए जहां से के बालपोर कमीशन के ऐलान के बाद सारे अरब वालों ने ऐलान कर दिया कि हम इसराइल को यहां यहूदियों को यहां कबूल नहीं करेंगे बम्बार में भगाएंगे कहानी वहां शुरू होती है सदामीन को फिर बाद जिन्होंने कहा था वहां से कहानी शुरू होती है मैं नजदीक मैं इस पर आर्टिकल लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं थी कि बालफोर कमीशन के मुताबिक वो यहूदी जो डायस्पोरा में थे वो अपने वतन वापस आ सकते थे पार्शियल सेंस में क्योंकि लिमिटेड कोटा का वर्ड यूज किया था लिमिटेड कोटा तो डायस्पोरा में रहने वाले यहूदी अपने वतन में लिमिटेड कोटा के साथ आ सकते हैं इससे कोई खराबी नहीं थी यह तो अर्ज मुकदस वापसी थी याद रखिए फलस्तीन को यहूदियों के लिए बाइबल में आया है प्रॉमिस्ड लैंड कुरान में आया असाइंड लैंड तो देखिए तो कोई हर्ज नहीं लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया आप कहा था हम सरमे को फिर बार तुमको मार के तुम डाल देंगे तो मारेंगे देर इज रिटेलिएशन तो आप रिटेलिएशन कहानी शुरू करते हैं इस्लाम कौसूल एक अल्बादी असलम अल्बादी असलम जो शुरू करे वो वही जिम्मेदार है तो मैं नैतिक शुरू करने वाले जो है वो अरब हैं और ये रिटेलिएट कर रहे हैं जब तक इस बुरादी गलती को ना माना जाए कि हमें कोई हक नहीं था कि हम ये कहें कि सर अरबी को मिल पा उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था हमको जब तक इस गलती को ना माना जाए तब तक इस मसले को समझा मुमकिन नहीं याद रखिए ये तस्फीफ है तस्फीफ कुरान के मुताबिक कि स्टोरी के सेकंड हाफ को ले आप स्टोरी के फर्स्ट हाफ को डालें यानी मैंने पत्थर मारा तो उसको मैं न बताऊं दूसरे ने मुझे बम मारा तो उसको बताऊं ये इस्लाम नहीं है ये तस्फीफ है तस्फीफ इस्लाम में जायज नहीं है
I forgot to mention the name of the person who had asked this question. His name was Muntaji Akbar. He hasn't mentioned his country. I'll move on to the next question. This is asked by Mr. Michel Lemmy, Delhi. Mulana, how are we to understand the expressions the face of God or the throne of God in the Quran? Do we take it as physical realities in paradise or just as metaphor?
Yes,
Mulana, he has mentioned that in Quran there are expressions like face of God and throne of God. So he's asked that are these metaphor or will they be realities in paradise?
लेकिन metaphor ये नहीं है लेकिन ये गैब की बातें हैं symbolic language आप कर सकते हैं उसको metaphor एक अलग चीज होती है metaphor या allegory अलग चीज होती है लेकिन वो बातें जो unseen world से ताल्लुक रखती हैं उनका मामला ये देखिए कुरान में ये बताया गया है कि कुरान के जो वो है वो दो है यानी मोहकमात और मुतशाबिहात कुरान के जो वर्सेस हैं वो दो किस्म की हैं मोहकमात और मुतशाबिहात मोहकमात का मतलब है डायरेक्ट लैंग्वेज में कहना और मुतशाबिहात का मतलब है मतमासला यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज में कहना तो सिंबॉलिक लैंग्वेज जो बात कही जाती है वो रियलिटी तो होती है लेकिन ऑडियंस को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए उसको एक उसको अख्तियार किया जाता है तो यहां मैं समझता हूं कि ये जो है ये सिंबॉलिक लैंग्वेज आप कह सकते हैं उसको क्योंकि जो रियल लैंग्वेज वो इस्तेमाल किया जाए तो उसको हम समझ नहीं पाएंगे
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर खालिद अंसारी दिल्ली पाकिस्तान हैज अ हिस्ट्री ऑफ डीथ्रोनिंग द rulers who always justified their action in the name of public interest. Maulana, Pakistan being an Islamic country, how do the ulemas living there always remain silent spectators rather than giving the correct perspective?
देखिए, मैंने अभी अर्ज किया कि इस्लाम में मुस्लिम रूलर के खिलाफ खुरूज हराम है। मेरे पास दो किताबें मौजूद है, यहां पर आप देख सकते आकर के, एक तो नौवीं की शरह, जिसे अलगुलू फिद्दीन, मेरी अपनी लाइब्रेरी में दो किताबें मौजूद हैं, अलगुलू फिद्दीन मोटी सी किताब है और मुस्लिम की शरह नौवी, दोनों में बताया गया है कि यह इस पर इत्तेफाक है उम्मत का कि मुस्लिम हाकिम के खिलाफ इसको डी थ्रो करना, उसको ओवर थ्रो करना यह हराम है, हराम। इसको मैं एक्सटर्नल से लेकर कहता हूं कि नॉन मुस्लिम हुकूमत के खिलाफ भी हराम है वो, ये वहां पर तो मुस्लिम हाकिम की बात है, लेकिन मैं उसको नॉन मुस्लिम हाकिम तक उसको एक्सटेंड करता हूं, दोनों को मानता हूं। लेकिन फिर भी अगर आप उसको इस्तादी समझे तो पाकिस्तान में तो मुस्लिम रूलर के खिलाफ होता रहा, अभी भी हो रहा है, ये सब तो हराम है, इसमें कोई शक ही नहीं कि हराम, कोई एक्सक्यूज इसके लिए नहीं है। लेकिन याद रखिए, एवाज तहमीर से पूछा गया, जो बहुत ही बड़े स्कॉलर है, कि हमारे हुक्मरान है, हमारे हाकिम रूलर अगर ऐसा करें कि ज़कात के नाम पर वो लोगों से पैसा लें और खर्च करें अपने जाती मामले में, इन ज़कात की रकम बहुत ही आप जानते हैं स्पेशल होती है, ज़कात की रकम होती है उसकी बताई, कुरान में बताया गया कि ज़कात यहां यहां खर्च करो, तो पूछा गया कि अगर इसी मसले के ज़ेल में कि अगर हुक्मरान ये करें, रूलर से करें कि वो ज़कात की रकम वसूल करें और खर्च करें अपने जाती उसमें, तो काम करें, तो उन्होंने कहा कि वही वही माने ऐसा करें तब भी तुम हमारे राजनीति खुल करो वही। ये तो जो पाकिस्तान में हुआ है वो तो सारे उम्मत के इजमा के तहत ही जायज नहीं है। मैं तो नॉन मुस्लिम रूलर के खिलाफ भी इसको नाजायज समझता हूं, उसको आप मेरा इश्तहार कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मामला मुस्लिम रूलर के खिलाफ तो वो तो इश्तहार की बात नहीं है, वो तो उम्मत का इजमा इस पर है। इसी वजह है कि आप पाकिस्तान दबाव है, आज पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, फेल्ड स्टेट नाकाम रियासत, सिर्फ अमरीका के उस पर वो कायम है, अमरीका अगर मदद न करें, बिलियन बिलियन डॉलर बम कर रहा है अमरीका, वो न करें तो पाकिस्तान खत्म हो जाए। इस्लाम से डिविएट करने का जो अंजाम पाकिस्तान है वही काफी है समझने के लिए कि उनकी पॉलिसी गलत थी, और कोई मतलब और कोई इसमें और दलील की जरूरत ही नहीं।
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर नफीस शराज। काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना क्यों लाजमी है जबकि खुदा हर जगह मौजूद है?
सवाल भी सरकार नहीं, आपने से मिलिए तो बताऊंगा, कुछ सवाल भी सर मिले।
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डॉक्टर फरीदा खानम। व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन द परफॉर्मेंस ऑफ दावा वर्क?
मैं समझता हूं कि इस जमाने में, इस जमाने में तो बहुत ज्यादा बड़ा रोल है औरतों का, जिसे लोधी गार्डन जो किस्सा बताया तो वहां मुझे पता चला कि मर्द जब गए देने के लिए पंपलेट तो वो लेने में रिलेक्टेंट थे, रिलेक्टेंट थे, जो लड़की के बड़े शौक दे दिए। तो मुझे एक किस्सा याद आया उसको, वहां का साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका में बहुत बड़े जंगल है, यूरोप में पी आर यू ग्रुप बहुत बड़े जंगल है, और वहां पर पहले जो थे, अब तो वहां सड़कें वगैरह बन गई हैं, बहुत पहले की बात बता रहा हूं आपको, तो मिशनरी क्रिश्चियन मिशनरी ने चाहा कि वहां पर अपना वो फैलाए क्रिश्चियनिटी, तो उन बहुत ज्यादा स्पिरिट होती है, मिशनरी स्पिरिट बहुत ज्यादा होती है आप जानते हैं क्रिश्चियंस में, लेकिन कुछ मर्द गए वहां पर, तो जाने की शक्ल ये थी कि वहां पर कोई रास्ता होते नहीं, वहां कार नहीं जा सकती थी, तो हवाई जहाज से उनको पैराशूट से उतरने की ट्रेनिंग दी गई मर्दों को, और हवाई जहाज से जंगल के ऊपर ले जाए गए और पैराशूट बांध करके वो उतर गए वो जंगल। तो क्या हुआ, तो किताब छपी उसमें ट्रांसलेशन किया था मैंने इस किताब का, वो छपा था पहले अजीमित वीकली में। तो उसका नाम शायद साधु क्या हुआ एडवेंचरर्स क्या था सर,
एडवेंचरर्स फॉर गॉड
उस किताब का नाम है। मैं इसका ट्रांसलेशन किया था उस जमाने में जब मैं अजमेर वीकली का एडिटर होता था, एडवेंचरर्स फॉर गॉड। तो बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये कहानी, मतलब वाक्य है। तो वो मर्द मिशनरी जो थे जब जंगल में उतरे नीचे, तो वहां के जो जंगली लोग थे प्रिमिटिव एज में लोग वॉक करते थे, वो उस टाइप के लोग वो इंसान को मार के खा जाए कुछ भी करें वो, तो उनको जब देखा उन्होंने तो मार के खा गए, जिंदा नहीं रहने दिया उनको। तो उनके पास वो था यानी उनके पास क्या टेलीफोन होता है वहां से
वायरलेस
उनके पास था, उन्होंने वायरलेस बताया कि जो हमें मार के खा गए, मरने से पहले उन्होंने सफर कर दिया अपने सेंटर में कि यहां आए तो मार के खा गए वायरलेस के जरिए बताया। तब मोबाइल नहीं होता था, तब मोबाइल नहीं होता था, वायरलेस हुआ करता था। तो उनकी जो बीवियां थी उनकी उनका जिंदा रहा कि क्या करेंगे, किसी पहले के तहत आउट क्वेश्चन उठा सकिया कि हमारे हस्बैंड मर गए तो हम भी जाते हैं उसे। तो उन्होंने पैराशूट से उतरने की वो लिया ट्रेनिंग लिया और हवाई जहाज उड़ करके वो गई वहां पर और उतरी वो औरतें जंगल। तो फिर वो सवाए वो जंगली जो मर्द थे इधर उधर दौड़ करके जब देखा कि औरतें हैं तो छोड़ चले गए। ये सब दोनों ने उन जंगलों में काम किया, बड़ी लंबी कहानी है और उनको किसने बनाया बाइबल छापी वगैरह वगैरह। तो ये हमें भी लिमिटेड वे में ऐसा तजुर्बा हो रहा है कि औरतें जब जाती हैं तो बहुत आसानी से रिलेटेड ले लेते हैं, इंटरेक्शन बहुत आसानी से वो बातें कर लेते हैं। ये सिर्फ लोधी गार्डन की बात नहीं, बाबा हमें तजुर्बा हुआ यहां से लेकर साइप्रस तक। तो मैं समझता हूं जबकि मुसलमानों की इमेज बड़ा खराब हो गई है, तो मैं देखिए मुसलमान जो है वो बम लिए रहता है, लेकिन औरतों से वो डर नहीं फील करते। जब मैं देखिए औरतें जो है वो हार्मलेस हैं तो बहुत आसानी से औरतों से बात सुनते हैं, औरतों के खास से वो कोई पैम्फलेट बुक ले लेते हैं। तो मैं समझता हूं इस जमाने में औरतों के लिए अभी भी वो रोल है खुदा परसी सौंपे, इस रोल को हमें बढ़ाना है, इस रोल को हमें बढ़ाना है औरतों के रोल, क्योंकि मॉडर्न जो वर्ल्ड है इसमें खासतौर पर औरतों के लिए जो चांसेस हैं वो मर्दों के भी नहीं।
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर फरहान मोहम्मद खान। Accepting Islam necessarily means believing in the concept of magic. In this day and age, how can non-Muslims be expected to overcome this hurdle of faith? Mulana, I repeat, accepting Islam necessarily means believing in the concept of magic. In this day and age, how can non-Muslims be expected to overcome this hurdle of faith? Well, according to him, he's saying that if one believes in Islam,
accepting manna ya usko chhod kar ke
accepting accepting
acha
accepting
aap accepting kar lete hain acha usko manna
ji
na ye to bahut hi superficial baatein hain, kuch log aisa kehte honge bole Islam ko kaun jadoo कहेगा, मैं तो उसको नहीं मानता। भाई मैं भी तो 80 बरस काम कर रहा हूँ दावा, मुझे तो ऐसा कभी पेश नहीं आया किसी कोशिश किसी कारण वैसे कुछ लोगों के दोनों के। इस्लाम तो बहुत ही साइंटिफिक मजहब है पूरे मानों में। अभी हबीब भाई की टेलीफोन आया था हैदराबाद से, उनका कि हैदराबाद में टूरिस्ट आते हैं तो एक ब्रिटिश लेडी उनको मिली, ब्रिटिश लेडी को उन्होंने कुरान दिया पढ़ने के लिए, तो पढ़ने लगी तो तहफुज हुए के तो ऐसा ऐसे मैगजीन पढ़ना इतना सिंपल है इतना क्लियर है इतना साइंटिफिक है, तो हम तो नहीं समझते कि ऐसा कुछ है इस्लाम के मामले में, कहीं होगा तो कुछ एक्सेप्शनल तौर पर होगा।
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर ख्वाजा करीमुद्दीन फ्रॉम पेंसिल्वेनिया। मौलाना साहब, व्हाट स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शंस यू हैव फॉर पाकिस्तान अथॉरिटीज एंड उलेमास इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस?
भाई बड़ा तो बहुत ही सख्त है वो, सबसे पहले वो ऐलान करें कि पार्टनरशिप वाज ब्लंडर, 47 में जो पार्टनरशिप किया वो ब्लंडर था, ब्लंडर। मैं ये कहता कि खत्म करें, जब तक आप यह जब मानी गलती थी तब तक आप कोई नई प्लानिंग नहीं कर सकते। आप सारी प्लानिंग पाकिस्तान के आज भी 60 ईयर से क्या है, एंटी इंडिया कैंपेन एंटी वो हेट इंडिया कैंपेन। मैं वहां तो पर्चे पढ़ता हूं, सब में बस हेट इंडिया भरा रहता है। ये खत्म करना पड़ेगा। आप कब तक जिएंगे नेगेटिव थॉट में, कब तक जिएंगे बताइए? इट रिक्वायर्स पॉजिटिव थिंकिंग। ऐसे थोड़ी दुनिया में चल सकते आप, कब तक चलेंगे आप? तो अपने आखिरी एंड पर पाकिस्तान पहुंच चुका है, हेट इंडिया कैंपेन में उसने अपने को तबाह कर लिया है। तो बस तो खुले तौर पर ऐलान करें पाकिस्तान के सारे लोग कि पार्टीशन जो करवाया गया ब्लंडर था, ब्लंडर। अब हम इंडिया को अपना दोस्त बनाएंगे सच्चे दिल से, हमारे भाई हैं वो, हम पड़ोसी की तरह रहेंगे। अभी तक ये मुंह से बोलते हो कुछ लोग सच्चे मानो अभी पड़ोसी की तरह रहने के तैयार नहीं पाकिस्तानी लोग। मेरे पास अक्सर पाकिस्तानी लोग आते हैं, एक बार तो एक पाकिस्तान के साहब है जो वहां वकील है, वो ये मिस्टर अजय तो बैठे हुए थे, आगे बैठ कर कहते क्या है वो, जब यहां एक क्लास नहीं होती थी वहां क्लास हुई तब की बात है। कहते साहब 1947 में आधे मुसलमान तो उनको आजाद हुए आधे मुसलमान गुलाम रह गए। 1947 में जो हुआ तो आधे मुसलमान आजाद हुए आधे मुसलमान गुलाम रह गए, मतलब इंडिया में गुलाम रह गए वहां आजाद हुए। तो ये लोग थे मिस्टर अजय वगैरह, उन्होंने कहा कि देखो हम एक पुलिस पास गुरु मानते हैं अपना, तो ऐसी बात करते हो।
मैं तो मदर इन गुलाम वबर इल्ला,
कई लोग थे ये
पहले मतलब इस्लाम
मैंने कहा कि ये मिस्टर अजय बल्होत्रा है, तुम ऐसी बात करते हो, हम तो इन्हीं को गुरु माने हुए, जो ये करते हैं उनको करते हैं, कैसे उल्टी बात करते हो? तो चुप हो गए। तो हेट इंडिया कैंपेन ने सबको ब्लाइंड कर दिया, ब्लाइंड सारे पाकिस्तानी उल्टी सोच में है। वो समझते कि हिंदू जो दुश्मन है इस्लाम, इस झूठ से बाहर आना पड़ेगा। हिंदू भी सारे इतने अच्छे हैं, हम जहां भी जाते हैं, अभी लोधी गार्डन में हमारी बेटी गई तो एक हिंदू जो है हिंदू उसने किताब से लिखा, मैं पाठ पढ़ता हूं इस्लामी लिटरेचर लेकर पढ़ने लगा, इतने अच्छे लोग हैं और तुमको वहां पर मशहूर करते हो ये दुश्मन है इस्लाम के और मुसलमानों के, इस झूठ से बाहर आना पड़ेगा। याद रखिए ये झूठ से बाहर आना पड़ेगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप इंडिया को आप सच्चे दिल से अपना नेबर मान लें, नेबर, और वो सब खत्म कर दें नफरत वाली बातों को, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिविटी जो है ब्रेकलेस इफेक्ट उसका होता है, नेगेटिविटी जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन का सोर्स है, पॉजिटिविटी सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन का सोर्स है। जिस दिन पाकिस्तान के लोग ऐसा करेंगे अंग्रेज देशों को नया फ्यूचर बनने लगे। दूसरा कोई ख्याल नहीं, कोई पैचअप करने वाली बात जो है वो उससे कोई कुछ होने वाला नहीं है. दिस इज द बिगिनिंग फ्रॉम हियर इज द न्यू बिगिनिंग. कि ऐलान करने के लिए ब्लंडर था पार्टीशन. अब हिंदू हमारे भाई हैं, हमें उनसे मिलकर रहना है, हमारे सच्चे पड़ोसी हैं, बस फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा.
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डॉक्टर फरीदा खानम. देर इज नो प्रेसिडेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री दैट द पीपल ऑफ द बुक हैव बिकम रेफ्यूजीज इन देयर ओन कंट्री ऑन सच अ लार्ज स्केल. हाउ कैन वी मेक देम रियलाइज what blunder they have committed for which they are paying the price.
Aap sochiye ye main akhbar padhta hu aaj kya ho raha hai. Apne mulk mein log refugee ban gaye lakhon ki tadad mein. Aap bhi dekhte honge tv mein akhbar mein aaj bhi ladai ho rahi hai afghaniyon mein aur pakistaniyon mein. Itni anokhi cheez hai. Apne mulk mein refugee ho rahe hain, apne mulk mein rehne ka thikana unko mil raha hai. क्यों उन्होंने बहुत भारी गलती कर रखी है कि मधु को दुश्मन डिक्लेयर किया. उन्होंने हिंदू हमारा मधु था उसको डिक्लेयर किया दुश्मन. इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं खुदा की शरीयत याद रखी कि मधु को आप दुश्मन डिक्लेयर करें. इसी का ये सजा मिल रही है. और जिस दिन वो ऐलान करें कि हम गलत कहा था, हमने हिंदू हमारे दोस्त हैं हमारे पड़ोसी हैं, उसी दिन सारा बात ठीक हो जाएगी. मेरे पुलिस से कुछ ठीक हो जाएगी आप लोग, इसमें कोई शक नहीं.
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मिसेस असमत. खुदा की कुर्बत कैसे हासिल करें?
इंसानों से दूर हो जाएं, गैर खुदा से दूर हो जाइए तब कुर्बत मिल जाएगी. ये कोई जोक नहीं है. लोग जीते हैं गैर खुदा में, तो खुदा कुर्बत कैसे मिले उनको? अपने बच्चों में जीते हैं, अपनी फैमिली में जीते हैं, अपनी कौम में जीते हैं, अपनी कम्युनिटी में जीते हैं, अपने बिजनेस में जीते हैं. तो जिसको देखे वो गैर खुदा में जीता है, तो खुदा कुर्बत कहां से मिलेगी? मैं एक मुसलमान घर में गया एक बार, तो वो उनका तलाक हो गई थी, अपनी बीवी से तलाक ले लिया था. तलाक होने वाली थी, हो गई थी. बार पूरे घर में उस वक्त सिर्फ एक कुत्ता था, और कुछ नहीं था. एक बेटा था, वो भी घर छोड़कर चला गया था, बीवी चली गई थी घर छोड़ करके. तो मैं उनको इस्लाम बात बताना चाहता था, तो मैं देखा कि इस्लाम की बात कम थी जिसमें उनको है. उस कुत्ता जो था उसको लेकर उसको किस कर रहे थे बार बार. इस सारे दिलचस्पियों में उस डॉग से थी. डॉग से खुदा से कोई दिलचस्पी नहीं. तो सारे लोगों का हाल यह है कि उन्होंने अपने आप को गैर खुदा में गैर खुदा से करीब कर रखा है. सारे इंसानों का हाल यह है गैर खुदा से अपना करीब कर रखा है. तो खुदा दूर हो ही जाएंगे. तो मैं इसलिए कुछ भी मुझे शक नहीं है कि जिस दिन आदमी अपने को गैर खुदा से काटेगा वो खुदा से जुड़ जाएगा. अगर नहीं काटेगा तो उसमें जुड़ने वाला भी नहीं.
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस नगमा. कैन यू इलैबोरेट हाउ वी कैन कीप आवर दावा इंटेंशन प्योर?
भाई दुआ कीजिए, कुरान को पढ़िए, ये तो बहुत आसान है. दुआएं कीजिए, कुरान को पढ़िए, हदीसों को पढ़िए, रसूलुल्लाह के जो असहाब थे उनके हालात को पढ़िए. इसी से वो स्पिरिट आ जाएगी. और सोचते रहिए, अपना ट्रांसफर्शन करते रहिए. बहुत सिंपल है ये कोर्स, कोई मुश्किल कोर्स नहीं है. इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है.
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम काजी मोहम्मद मियां. जालिम और हक तलफी करने वाले हाकिम के लिए कुरान में क्या आदेश है, हाकिम मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम?
सिर्फ पीसफुल नसीहत बस आप लड़ नहीं सकते, बिल्कुल हराम याद रखे इस्लाम, जालिम के कह करके उसका लड़ाई छेड़ना जायज ही नहीं इस्लाम। आप उसकी नसीहत कीजिए, आप उसके लिए दुआ कीजिए, आप उसको इस्लामी लिटरेचर पहुंचाइए, सौ वर्ष बीत जाए तब भी आपको यही करते रहना है, लड़ाई नहीं छेड़ना है। बिल्कुल इसमें कोई भी मुझे शक नहीं है मुझे कि जो रूल का खिलाफ लड़ाई छेड़ता है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये रास्ते सारे खुले हुए हैं आपके लिए, दुआ कर सकते हैं आप, पीसफुल तरीके समझा सकते हैं आप, किताबें दे सकते हैं आप, कुरान दे सकते हैं उनको आप। ये भी गलत है कि आप डेमोस्ट्रेशन करते हैं, सड़कों पर जुलूस निकलते हैं, तफरें होती हैं, फड़काने वाले तफरें होती हैं। अगर आर्म न इस्तेमाल करें हम, हथियार ना इस्तेमाल करें तब भी ऐसी तखीरें भी हराम है इस्लाम याद रखिए, भड़काने वाली तखीरें। एक है हथियार इस्तेमाल करना, सुसाइड बॉम्बिंग करना, वो तो हराम ही है, ये भी इस्लाम में जायज नहीं है कि आप भड़काने वाली तखीरें करें, इश्तार जलाने वाली तखीरें करें सड़कों पर और जलसों में लाउड स्पीकर चिल्लाएं, ये सब भी जायज नहीं है इस्लाम में। इसमें जरा भी शुक्रिया, किसी को अगर रेफरेंस चाहिए तो मैं रेफरेंस दे सकता हूँ, मेरे पास ऑफिस में आ जाए मेरे पास।
दिस इज एन एक्सपीरियंस विच आई वुड लाइक टू नरेट टू एवरीवन प्रेजेंट हियर, एंड दिस इज व्हाट डॉक्टर फरीदा एक्सपीरियंस्ड, डॉक्टर फरीदा एंड सूफिया एक्सपीरियंस्ड यस्टरडे एट लोधी गार्डन। शी इज रिटन, आई वुड लाइक टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद द मेंबर्स ऑफ द CPS ऑफ टू डेज ऑफ इंटरेक्शन इन द लोधी गार्डन्स। It was very successful, and that the CPS was invited to explain the mission to 100 people who gather there on Sundays. I was moved to tears when their leader, Mr. I.S. Gandhi, took the pamphlets from my hand and distributed them to all the members himself. He also said to Sophia not to be afraid of anyone, as she was engaged in such a noble cause. I'll move on to the next question, which has come from
Mr. Rajat Bulaya Taqir Karne Ke Liye Vaan Jane Wale Inka Baqaida Woh Hota Hai Lodi Garden Hota Hai Iske Alawa Usme Usme Hota Hai
Rotary Club
Hall Mein
Rotary Club
Usko Unhone Invite Kiya Ki Aaiye Vahan Par Aap Apne Mission Ko Bataiye Aap Mission Ko Bataiye Vahan Par Kya Aapka Mission Hai Kitni अपॉर्चुनिटीज हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं।
दिस क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम मिस्टर खाजा कलीमुद्दीन फ्रॉम पेंसिल्वेनिया। मौलाना साहब, शुड पैलेस्टीनियंस एक्सेप्ट एनी ऑफर दे गेट फ्रॉम इजराइल इन दीज सर्कमस्टेंसेस, और शुड दे हैव एनी मिनिमम डिमांड?
देखिए, अभी तक पैलेस्टीनियन को अरब लीडरों को पता नहीं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। मुझसे एक अरब से बात हुई, उसने कहा कि मेरे नब था फ्रॉम वेयर टू बिगिन, यही लोगों को पता नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट है फलस्तीन अपने आप को डिसआर्म करे। याद रखिए, जो अब हो रहा है कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज कर रही। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो इसराइल बम मारती है। तो बस तो ये इन द बिगिनिंग, मेरी बात वहां पर बड़े लीडरों से हुई, इसराइल में गया था तो मैं उसे जो केस किया, उसे जो इस किया, सारा मसला जो है फियर पर बेस करता है। वो समझते हैं कि कहीं भी बम मार देंगे, वो बस पर मार देंगे, स्कूल पर मार देंगे, क्लब में मार देंगे, होटल में मार देंगे। तो जो इसराइली लीडर हैं इस फियर में जीते हैं, इस फियर से उनको बाहर आना पड़ेगा आपको, ये तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अब जाते कई डेविड कैम में बातें हुई और कितने सारे वो ऑस्लो में बातें कहाँ कहाँ हुई, लेकिन असल चीज ये है कि हर वक्त उनको इधर लगा हुआ, कहीं भी बम मार देंगे, कहीं भी सुसाइड बॉम्ब कर लेंगे, ऐसी हालत में कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हियर इज द बिगिनिंग, फिलिस्तीनियन जो है अरब लोग अपने आप को डिसआर्म करें, ना गवर्नमेंट जो एनजीओ हैं इन्हें हुकूमत के खिलाफ बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन बना रखे लोग उसको डिसआर्म करें, स्ट्रिक्टली उन्हें कहें कि तुम सिर्फ पीसफुल एक्टिविटी चला सकते हो, बस हथियार नहीं। आप देखें कि अचानक ही हालत बदल जाएंगे। मैं खुद दो बार मैंने वहां गया हूं और वहां के लीडरों से बात की है, मैंने एक ही जगह है जहां रुका हुआ है मामला कि वो सारे यहूदी फियर में जीते हैं, सारे यहूदी फियर में जीते हैं कि कहीं बम मारने गई है, इन्हें तो स्वर्ट बॉम्बिंग करने में कोई वो नहीं है, क्योंकि जन्म समझते हैं जन्म जाएगा, हम सुसाइड बॉम्बिंग करके जन्म चले जाएंगे तो कहीं भी बम मार सकते हैं। तो हर वक्त वो फियर में जीता है इसराइली यहूदी। तो आप अगर चाहते हैं कि इसराइल से कोई नॉर्मल ताल्लुक कायम हो, कोई अच्छा उनसे अग्रीमेंट हो जाए और सही तरीके से कुछ काम आगे बढ़े, तो इसकी पहली कंडीशन या पहली कंडीशन कि आप अरबों के जो ये अग्रेशन है हमको डिसआर्म कीजिए, उसको सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने जाती जो बातचीत रोज की है, जाती जो तजुर्बा किया है, उसकी बिना बेस पर ये कह रहा हूं।
मौलाना, दिस इज अगेन अ कमेंट बाय मिस्टर ओपी सिक्का। He's written, Molana Sahib, this is not a question but just my feelings about dawa work. That dawa work gives two blessings. Number one, it gives blessings for those people who do dawa work, and secondly, to those people who receive it.
MashaAllah, bahut bahut acha hai. Sikka sahab hamare buzurg hain, main khaas tarah se senior hai wo. तो आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं।
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर खालिद अंसारी। मौलाना, इंटरेक्शन से एक चीज सामने आई है कि ऑलमोस्ट हर मुसलमान ये सोचता है कि किसी के खिलाफ अगर जुल्म हो रहा हो तो उसे ताकत से रोको, अगर नहीं तो उसे जबान से बुरा कहो, और अगर ये भी नहीं तो कम से कम दिल से बुरा मानो। मौलाना, ये सोच मुसलमानों में क्या किसी कुरान के रेफरेंस या हदीस के मिस इंटरप्रिटेशन से आई है?
हाँ, देखिए ये इसको समझना बहुत जरूरी है। सारे मुसलमान इसी फलसे में, सारे लोग हत्ता के उलमा भी इसी फलसे में जी रहे हैं। हदीस सही हदीस आया है कि मन रहा मुनकरन फल गयर बेदी और मल्लम सत्य फिले सारी और कल भी, इसमें इस्तेमाल का लफ्ज याद रखिए, इसी को लोग भूल जाते हैं। जब इस्तात वो सिर्फ चाहते हैं किसी को अब देखें कि वो गलत कर रहा है, लड़ जाए उससे, यह है नहीं इस हदीस में। जब इस्तात माने अगर तुम्हारी कैपेसिटी में है तुम उसको रिजल्ट पैदा कर सको, रिजल्ट यानी अगर तुम देखो कि एक आदमी गलत कर काम कर रहा है तो बस है कि तुम वहां रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन ले सको, तो वो उसके लिए नहीं तो फिर कुछ नहीं, फिर दुआ दुआ करो उसके लिए। लफ्ज इस्तेताद जो इसमें है उसी को भूल करके इस हदीस में सब लोग बयान करते रहते हैं। इसमें देखिए तीन बातें हैं, अगर तुम मुनकर देखो, मुनकर माने कोई ऐसी चीज जो सही ना हो, कोई गलत चीज देखो, तो अगर तुम्हारे बस में है, तुम्हारे कैपेसिटी में है, कैपेसिटी का मतलब है रिजल्ट निकालना तुम्हारे बस में है। फर्ज किया कि मैं रोड पर देखूं कि एक पुलिस वाला किसी आदमी को मार रहा है, तो मेरी कैपेसिटी में अगर है तो मैं उसको पकड़ूंगा, पुलिस वाले को उसका हाथ पकड़ूंगा, उसका डंडा छीनूंगा। लेकिन मेरी कैपेसिटी में नहीं है तो बस नरमी से कहूंगा कि भाई क्यों मार रहे हो। अच्छा, ये भी कैपेसिटी में अगर नहीं है तो दिल से दुआ करूंगा, दिल में उसको अच्छा नहीं समझूंगा। तो बेसिक जो क्रूशियल वर्ड इसमें वो लगते हैं इस्तात है। इफ इट इज इन योर कैपेसिटी टू हील द रिजल्ट, टू हील अ पॉजिटिव रिजल्ट, میں دخل دے کر کے پازیٹیو نظر نکال سکتا ہوں تو دخل دو. یہ مسئلہ تمہارے نہیں ہے تو مجھ سے ٹھنڈے طریقے سے درمی کے ساتھ بولو. یہ بھی مسئلہ نہیں ہے, دل سے سمجھو کہ یہ کام اچھا نہیں ہو رہا ہے, میں تم دعا کروں. جتنے لوگ اس حدیث کو بیان کرتے پھرتے ہیں سب نے اس کو بلا رکھا ہے کہ میں لفظ استطاعت ہے, وہ لفظ استطاعت ہے کہ بس میں نہ ہو رزلٹ نکالنا. رزلٹ نکالنا تو یعنی پازیٹیو رزلٹ, پازیٹیو رزلٹ نکالنا بس میں نہ ہو تو پھر اس کو یہ کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی فلسفی ہے, اس میں سالوں جی رہے ہیں, حتیٰ علماء بھی اسی میں پھنسے ہوئے ہیں اسی فلسفی میں کہ لفظ استطاعت کو نکال کر کے مطلب اس کو بیان کرتے ہیں. جیسے کوئی کسی کو آپ دیکھیں کہ ظلم کر رہا بس کود پڑے اس میں, یہ حدیث ہے تو حرام ہے اسلام میں. دیکھیے اسلام میں رزلٹ اورینٹڈ ایکشن ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من حسن اسلام مرے ترک مالا جانی ہے, یعنی اسلام میں رزلٹ اورینٹڈ اسپیچ ہے, رزلٹ اورینٹڈ ایکشن ہے, رزلٹ اورینٹڈ بیہیویئر ہے. یہ نہیں کہ رزلٹ نکلے نہ لے کر آپ کود پڑے اس میں, یہ اسلام ہرگز نہیں ہے.
This question is from Miss Maria. What is the concept of Mukammal Islam and how did it become the prime objective of Muslims?
دیکھیں مکمل اسلام جو ہے یہ بالکل ایک وہ ہے innovated word ہے, بدعت ہے, نہ حدیث میں نہ قرآن میں, کہیں بھی نہیں. اس زمانے میں یہ نکالا کچھ وومن چلی عرب میں بھی اور نان عرب ایریاز میں بھی, مکمل اسلام. مکمل اسلام کر کے انہوں نے جو اسلام کے جو وہ ہیں قانون وہ اس کو بھی شامل کر لیا اس میں, تو اس کو انہوں نے سبجیکٹ آف انفورسمنٹ بنا دیا کہ سارے اسلام کو نافذ کرنا ہے. دیکھیں اسلام کے دو پارٹ ہیں, ایک پارٹ وہ ہے جس پر عمل کرنا میں اپنے ذاتی ڈسیزن پر کافی ہے. اس میں جب میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, میں نماز پڑھنا چاہ رہی تو نماز پڑھوں تو کوئی روکا گا نہیں مجھے, میں سچ بولنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی روکا گا نہیں, میں سچ بولوں. آنےسٹی مجھے کرنا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑے گی. تو ایک وہ ہے اسلام میں چیزیں جس پر جس کو فالو کرنے کے لیے آپ کا اپنا فیصلہ ہی کافی ہے, آپ کا ڈیسیزن لینا ہی کافی ہے. یہ ہر آدمی پر فرض ہے, ہر آدمی کو کرنے کرنا ہے. جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کا اپنا ارادہ, آپ کا اپنا ڈیسیزن لینا ہی کافی ہے کہ آپ کو کریں, تو اس میں پھر آپ کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں, وہ کرنے کرنا ہے آپ کو. لیکن جب معاملہ آیا سوسائٹی کا, سسٹم کا, تو وہاں ایک شرط, ایک کنڈیشن لگ جاتی ہے. وہ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر سوسائٹی پریپئرڈ ہے تب حدیث میں آتا ہے کما تکونون کذلک یو اللہ علیکم, یہ سوسائٹی ویسا رولر, سوسائٹی جیسے ویسے رولر ہوں گے. زبردستی نہیں کہ آپ لا کر کے سوسائٹی بگڑی ہوئی ہے زبردستی آ کر کے آپ اسلام کو امپلیمنٹ کرنے لگے, اسلام میں نہیں ہے جو. تو اسلام کا طریقہ کیا ہوا کہ انڈیویجول کے اندر آپ ان کو ٹھیک کیجئے, ان کو اصلاح کیجئے, پھر سوسائٹی کی اصلاح کیجئے, پھر سسٹم کی اصلاح کیجئے, پھر الیکشن پروسیس کے ذریعے سے جو اوپر آ جائے گا وہ رول کرے گا. اسلام میں پالیٹک جو ہے وہ اس پر بیس کرتی ہے, یعنی ڈیموکریٹک پروسیس پر. نئی اگر میں ٹرم استعمال کروں تو پالیٹکس جو ہے اسلام میں وہ سارے کے سارے ڈیموکریٹک پروسیس پر بیس کرتی ہے. آپ خود اپنے معاملے میں خود عمل کیجئے, باقی چھوڑ دیجیے آپ ڈیموکریٹک پروسیس پر, یعنی لوگ جو فیصلہ کریں گے ویسے لوگ حکومت کریں گے. بس یہ نہیں کہ آپ زبردستی لڑ مل کر کے کہیں گے ہم یہ امپلیمنٹ کرنا ہے, ہم وہ انفورس کرنا ہے جو طالبان کر رہے ہیں. یہ طالبان والا جو طریقہ ہے وہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. تو خلاصہ یہ کہ دو آسپیکٹ ہیں, ایک ہے انڈیویجول کو کے اندر چینج آنا, اور ایک ہے سوسائٹی کے اندر چینج لانا. تو انڈیویجول کے لیے چینج لانا جو ہے بہت آسان ہے, کیونکہ آدمی کے اپنے ارادے پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ, لیکن سوسائٹی کی بات آ جائے, سسٹم کی بات آ جائے, تو وہاں پر کیا ہوگا, وہاں پر آپ کو یہ نہیں کر سکتے آپ کہ وہاں پر کوئی وہ بائی فورس کریں, بائی فورس آپ کے لیے بالکل جائز ہی نہیں ہے. سوسائٹی کو بنائیے, معاشرے کو بنائیے, لوگوں میں حصہ لائیے, جب وہ ایکسیپٹنس آ جائے ایکسیپٹنس, تو اپنے آپ کو وہ اسی قسم کے رولر اوپر آ جائے گی. یہ سوشل ایکسیپٹنس ضروری ہے, اس پر میں نے کئی کتابیں لکھی ہیں, اور اس پر جو قرآن حدیث کے جو اس میں دلیلیں ہیں کچھ جو جاننا چاہتے میرے پاس آ جائے میرے آفس میں بتاؤں گا میں, کہ سوشل ایکسیپٹنس کے بغیر امپلیمنٹ کرنا یہ بالکل اسلام میں نہیں ہے. طالبان کیا کرتے ہیں, سوشل ایکسیپٹنس نہیں ہے اور پھر وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ اسلام نہیں ہے بالکل. سوشل ایکسیپٹنس جب ہوگا تب وہاں پر اسلام کا قانون آئے گا, نہیں تو پھر آپ نصیحت کیجئے, سمجھائیے, لٹریچر بانٹیے, قرآن پڑھائیے, یہی اسلام کا طریقہ ہے.
دس کوشچن از فرام مس رازیہ. مسلمز آفن ڈیفرنشیٹ دیم سیلوز بائی یوزنگ دا ٹرم امہ. واٹ از دا ریئل میننگ آف امہ اینڈ ڈز دس ٹرم ہیز اینی سگنیفیکینس؟
دیکھیے, امہ کوئی مسٹیریس ورڈ نہیں ہے, حکم مانے کرو گروپ, بس گروپ کے معنی ہے امہ کے. تو مسلمان جو اپنے کو مسلمان کہیں وہ گروپ بن گئے, بس اچھا ہے کہ جو امہ ہے وہ سب جنت میں جائے گا. دیکھیے, یاد رکھیے, امہ ایک کمیونٹی کے لیے بولا جائے گا, پہلے پوری کمیونٹی کے لیے, لیکن پیراڈائز جو ہے وہ انڈیویجول بیس پہ ہوتی ہے. تم نہ خورا تھا, ایک ایک انڈیویجل کے حساب سے فیصلہ ہوگا کون پیراڈائز جائے کون نہیں جائے گا. امہ وائز نہیں ہوگا بٹ انڈیویجل وائز ہوگا جنت کا فیصلہ. دنیا کے لحاظ سے ایک امہ ہے, ایک گروپ ہے, گروپ آف پیپل ہے, لیکن جنت کا تعلق معاملہ بالکل اس سے الگ ہے, وہ انڈیویجل وائز ہوگا. ایک آدمی کا ریکارڈ دیکھا جائے گا, اس کے لحاظ سے اس کا فیصلہ ہوگا. تو امہ کوئی مسٹیریس ورڈ نہیں, کوئی فضیلت کا ورڈ نہیں ہے, کوئی سیکورٹی بھی اس میں نہیں ہے, بس ایک گروپ. ہندو میں ایک امہ ہے, بدھسٹ میں ایک امہ ہے, کرسچن میں ایک امہ ہے, گرو ہے, ایسے مسلمان میں ایک امہ ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں.